दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समाप्त फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हर किस मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवी उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज जुमेरात है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नखमाए सहर और बस्मे दीवान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 20वां बाब पहली 16 आयात। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि आसमान की बादशाही उस मालिक के मकान की मानित है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से एक दिनार रोजाना ठहरा कर उनको अपने ताकिस्तान में भेजा, और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने छठी और नवीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुलाओ और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। फिर जब पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमको ज्यादा मिलेगा, मगर उनको भी एक ही एक दिनार मिला और वो लेकर मालिक के मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ए मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता, क्या तूने मुझसे एक दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ उतना ही उस पिछले को भी दूँ, या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू इसलिए बुरी नज़र से देखता है कि मैं नेक हूँ? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा मन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में उस बड़े असूल को जो मत्ती 19 बाब में है और मत्ती 20वें बाब की 15 से 16 आयत में है दोहराया गया है। ये आयत वाजे कहती हैं कि अजर का दारोमदार ज्यादा खिदमत या अच्छी खिदमत पर नहीं है, इसका इन्हिसार खुदा के फजल और मसीह पर ईमान पर है। पतरस का ख्याल था कि चूंकि उसने उस्ताद की खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए वो उसे यकीनन बड़ा अजर देगा। यीशु ने अजर का वादा तो किया, लेकिन साथ ही उसने उस नियत की मलामत भी की जो मोहब्बत और शुक्रगुजारी के बजाय किसी को अजर हासिल करने के लिए खिदमत करने पर उकसाती है। यीशु अब्दी अजर देने में बादशाह है। अजर यकीनी है, लेकिन अजर हासिल करने की नियत से खिदमत न की जाए। ए खुदावन, हमें ये तौफीक दे कि हम अजर हासिल करने की नियत से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से और शुक्रगुजारी से तेरी खिदमत कर सकें। आमीन।
आदाबश दोस्तों, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। दोस्त, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और मेरे साथ हैं जी आपके पसंदीदा अंकल दीवान। पेश खिदमत है जी आपका अपना प्रोग्राम बस्मे दीवान।
सुनाइए सामिन, कैसे हाल अहवाल हैं आपके? भाई, उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावंद के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। हैं जी, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल जहरी सी बात है। और वैसे भी जो है ना, एक दूसरे के साथ बंदे को हमेशा हंस के मुस्कुरा के जो है वो पेश आना चाहिए।
सही कह रहे हैं अंकल। अच्छा अंकल, अरे ये क्या, आपके हाथ में तो बहुत बड़ा मोबाइल है आज, ये कहाँ से ले लिया?
शाबाश, कर लो बातें। गरीब आदमी के पास ना कोई चीज ना कोई देख ले, ये कहाँ से ले लिया? मैं भी आखिर इस दुनिया में रहता हूँ, मल्ले में सोचा है, हैं जी, मैं भी मोबाइल ले सकता हूँ। ऐसी कौन सी बात है, तुमने तो मेरे साथ वो रक्षे वाली की है।
क्या अंकल?
और मैंने उस दिन उसको बोल दिया, मैंने कहा यार भाई डिफेंस जाना है। कहता है यार अंकल तुम्हारा डिफेंस जाना बनता है, पहले मुझे ये बताओ।
नहीं अंकल, ये कुछ मामूल से ज्यादा ही बड़ा और हैवी वाला लग रहा है। कितने का लिया अंकल, और क्या ये इसकी जरूरत पड़ गई? आपके पास तो वो छोटे वाला मोबाइल हुआ करता था।
और नहीं, वो दरअसल ना हमारे एक मेहमान है, रिश्तेदार है हमारे बड़े दूर के, अब नजदीक के हो गए हैं, जहरी सी बात है भाई। अब तो हम उनकी आओ भगत करने में लगे हुए हैं।
ओहो, कौन से है अंकल ये मेहमान आपके?
और बाहर से आए हुए थे हमारे, वो मतलब चाचे के कुछ रिश्तेदारों में से थे।
अच्छा,
एक लैपटॉप लेके आए हैं।
वाह
जी, वो तुम्हारी अंटी यानी कि मेरी जोजा मोहतरमा यानी कि बेगम साहबा को उन्होंने गिफ्ट किया है, और ये मोबाइल लेके आए हैं।
अच्छा, तो मोबाइल आपके पास रहेगा?
जहरी सी बात है मेरे पास रहेगा, और मैंने इसको आटे वाली मट्टी में रख के आना करना है।
अच्छा चले अंकल, अब तो आप इस पे इंटरनेट भी यूज किया करेंगे ना?
हैं जी, इस पे इंटरनेट क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस पे फोन करूँ करूंगा, इंटरनेट क्यों यूज करना है?
अरे अंकल, आप अपनी फेसबुक की आईडी बनाएं, व्हाट्सएप है, इतनी इतनी एप्लीकेशन आई हुई है, सब डाउनलोड करें और बस लगे रहे।
हाँ जी, वो मैं तो यकीन जानो फेसबुक आईडी मैंने बनाई थी।
अच्छा,
तो पहले दिन ही कमेंट्स ही अजीब से आए।
क्या
कहते हैं, ना तुम्हारी फेस अच्छी ना तुम्हारी बुक अच्छी, अंकल दीवान कौन से काम में लग गए हो?
अरे अंकल, ऐसे कमेंट्स जो हैं वो तो आते जाते रहते हैं, शायद किसी ने नोक झोंक में कर दिया हो।
और नहीं नोक झोंक में क्या, माँ इसका ये एक फायदा है भाई
जी,
कि इसके साथ वो नहीं वो जो लेते तस्वीरें वो सेल्फी,
हाँ
वो बनाने का बड़ा मजा है।
क्या बात है अंकल, अंकल कोई आपने कोशिश की है सेल्फी बनाने की?
हाँ जी, कोशिश की है। कल मैंने अभी सवेरे मतलब तुम्हारी आंटी यानी कि मेरी जोजा मोहतरमा को मैंने फोन पकड़ाया है।
हाँ।
फिर मैंने ना मतलब उसको बोला है जी ये लो भाई मेरी सेल्फी बना दो जरा सामने से।
क्या मतलब अंकल, सेल्फी आंटी कैसे बना सकती है? सेल्फी तो वो होती है जो आप अपनी तस्वीर खुद से बनाते हैं, उसको सेल्फी कहा जाता है।
शाबाश, कर ले बातें भाई। अच्छा, खुद तस्वीर बनाने के लिए तो हाँ मैंने देखा है वैसे कई लोगों को ना, मैं भी सोच रहा होता था पता नहीं इनकी नजरें कमजोर है, ऊपर को सूरज की तरफ करके मोबाइल पकड़ा होता है, अब मुझे पता चला है कि वो सेल्फियां बना रहे होते हैं।
सही कह रहे हैं अंकल। और आपको पता है कि सेल्फियां बनाते हुए कितने मुंह के जाविये बदले जाते हैं?
हाँ जी, जहरी सी बात है भाई, मुंह के जाविये तो बदलने हैं ना, और फिर फौरन जो है ना उसको अपडेट भी कर देते हैं।
जी हाँ,
सारी दुनिया देख रही होती है कि भाई ये इसने सेल्फी बनाई है।
पता है अंकल ये सेल्फी का बुखार कितना ज्यादा है?
हैं जी, पहले मलेरिया का बुखार होता था, डेंगू का बुखार होता था, मौसमी बुखार होता था, अब ये सेल्फी का भी बुखार आ गया।
हाँ जी अंकल बिल्कुल, क्योंकि अंकल जो चीज सर पे चढ़ जाती है ना, जिसका भूत सवार हो जाए, बस उसी का बुखार होता है।
हाँ जी बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हैं जी
सही कह रहे हैं।
यकीन जानो कई लोगों के सिर पे तो इतनी जुएं चढ़ी होती है कि किसी और चीज के चढ़ने की जगह ही नहीं बाकी बचती।
अरे अंकल आप जुओं की तरफ ले गए इस टॉपिक को।
शाबाश कर लो बातें ऐसी तुम्हारी से, मुझे पता चलता था
क्या
कि तुम्हारे भी सर पे कुछ और सवार होने वाली चीज जो है ना उसको जगह नहीं मिलेगी।
नहीं अंकल ऐसी बात भी नहीं है। अब अच्छा अंकल ये जो सेल्फी है ना, ये लेना पता कितना खतरनाक है, और कई लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं सेल्फी लेते हुए।
अच्छा जी।
जी हाँ।
ये सेल्फी में से क्या मतलब गोलियां निकलती हैं कि जानें चली जाती हैं?
अरे नहीं अंकल, सेल्फी लेते वक्त हम जो हमारा ध्यान जो होता है वो कैमरे में होता है, अपनी तस्वीर को देख रहे होते हैं।
हाँ
अब पीछे आप किस किनारे पर खड़े हैं, पहाड़ पर चढ़े हुए हैं या कहीं घर में हैं, किसी दीवार के करीब हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। सेल्फी लेने के चक्कर में, बस व्यू बनाने के चक्कर में जब पीछे पीछे होते हैं तो बाज़ुकात बहुत बड़ा हादसा भी पेश आता है, और ऐसे वाकयात जो है दुनिया में आम हो चुके हैं।
हाँ जी बिल्कुल, और ये मुझे अभी थोड़ी थोड़ी और समझ आना शुरू हो गई है। ये कल परसों पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में मैंने एक खबर भी पढ़ी थी।
कौन सी?
एक कोई बच्चा जो है ना उसको सेल्फी का जुनून जो है
जी
वो उसकी मौत बन गया है।
सही सही कह रहे हैं अंकल, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि इस तरह के जो बुखार हैं वो आते जाते रहते हैं, और ऐसे जो शौक होते हैं उनको बड़े एहतियात से पूरा करना चाहिए।
हाँ जी, और उसका अजीब सा वाकया हुआ है, वो घर पे कहीं बैठा हुआ था।
अच्छा।
ऐसे ही उसको भी किसी दूर के रिश्तेदार ने दे दिया होगा फोन शोन। हैं जी, घर पे उसके ना वालिद की जो है ना वो पिस्तौल पड़ी हुई थी।
अच्छा।
हाँ जी, वो पिस्तौल के साथ सेल्फियां बना रहा था।
हाँ।
कभी ऐसे मतलब मुंह के सामने रख के बना रहा है, कभी किसी तरह बना रहा है, एक हाथ में सेल्फी, वो मोबाइल जो होता है सेल्फी वाला, एक हाथ में पिस्तौल थी। एक सेल्फी वो बनाने लगा है तो उसने अपनी कानपट्टी पे जो है ना पिस्तौल रखा है।
हाँ।
बस फिर क्या था, वो सेल्फी वाला बटन दबाना भूल गया, पिस्तौल वाला बटन दबाया गया।
अंकल देखा, बाज़ुकात ऐसे छोटे मोटे जो काम होते हैं, घरों में हथियार भी जो आम रखे होते हैं, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा अंकल, सेल्फी के हवाले से एक सच्चा वाक्य आपको बताती हूँ। हमारे ही एक अजीज थे, ये शादी थी भाई की।
अच्छा ठीक है, ये सच्चे वाक्य बताने के लिए ना वक्त दरकार होता
हाँ,
है, और कई दफा
ये
होता है कि मुझे खुद एहसास दिलाना पड़ता है तुम्हें कि वक्फे का टाइम होने वाला है।
चले ठीक है अंकल, अभी हम ले लेते हैं वक्फा, और वक्फे के बाद हम आपको जो है सेल्फी लेने के मजीद खतरा जो अपने दोस्तों को भी बताएंगे। ठीक है
जी, जरूर
दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, हम अभी थोड़ी देर में इस मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। दोस्त, ये रेडियो वेरिटास एशिया की उर्दू सर्विस है, और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बस में दीवान। जी दोस्तों, वक्त के बाद एक मरतबा फिर से हम आपको प्रोग्राम बस में दीवान में खुशामदीद कहते हैं। और जी आज का जो हमारा मौजू है ये है सेल्फी के खतरात, और इसी हवाले से हम आपको मुख्तलिफ बातें भी बता रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं।
जी तो चलें, आप सेल्फी के हवाले से बात कर रही थी इरम, कि सेल्फी जो है ना वो लेना जो है मतलब अच्छी बात है, हर बंदे का अपना शौक होता है, एक मशगला होता है, लेकिन इसमें एहतियात बड़ी जरूरी होती है, और आप किसी अपने ना जानने वाले का सच्चा वाकया बताने लगी।
जी अंकल, ये वाकया कुछ इस तरह है कि कराची में शादी थी, और शादी के बाद लाहौर में लड़की को लेकर ना लड़के वाले वापस आ रहे थे, लड़के का भाई अब ट्रेन
में। जाहिर सी बात है, लड़के वाले लड़की को लेके वापस आते हैं, और लड़की या लड़के को लेके थोड़ी चली जाती है।
अरे अंकल कजन थे ना, तो कराची में शादी हुई दोनों की।
अच्छा, कजन थे और दोनों की शादी हुई कराची में।
हाँ जी,
तो
वहाँ से वो वापस आ रहे थे लाहौर की जान।
तो दोनों इकट्ठे ही आ रहे थे?
अंकल पूरी बारात आ रही थी वापस ना।
अच्छा जब अच्छा, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो दोनों कजनों की आपस में शादी हो गई।
हाँ जी
हाँ जी, ठीक है।
और जब वो कराची से लाहौर आ रहे ट्रेन में, तो जो भाई है लड़के का, जवान था बिल्कुल,
अच्छा
वो दुल्हन के साथ सेल्फियां बना रहा है, मतलब पूरी बारात में सेल्फियां बनाई जा रही है ट्रेन चलती ट्रेन में। फिर उसको व्यू किसी ने कहा कि भाई अगर दरवाजे में बनाई जाए तो पिछला व्यू जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा।
क्या बात है, वेरी गुड, मैं सदके जाऊं मशवरा देने वाले
के। बस अंकल क्या था, एक हाथ से उसने वो चलती हुई ट्रेन के हैंडल को पकड़ा है, दूसरे से वो क्लिक कर रहा था मोबाइल पकड़ के व्यू मेरा ऐसा आ जाए कि मैं बड़ा बहादुर दिख रहा हूँ और ये हो रहा है और मैं यहाँ पे बड़ा ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। बस क्या था कि सेल्फी, वही हाल हो गया ना कि क्लिक उधर का नहीं हुआ, दूसरे पिस्तौल वाले हाथ का आ गया।
हाँ जी, हाँ जी,
सेल्फी
हाँ जी।
बनाते बनाते बस वो हाथ स्लिप हुआ है, फिसल गया और वो चलती गाड़ी में से नीचे गिर गया।
सदके जाऊं जवान, ये नसल के
जी
यकीन जानो, ये कोई शौक होता है या नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या कुछ ऐसी चीज आ जाती है ना
जी,
ये तो दीवाने ही हो जाते हैं, पागल ही हो जाते हैं। और जिंदगी से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं होती, सेल्फी नाम ही बड़े ना, फिर भी बंदे का काम चला जाता है, लेकिन अगर इंसान की जान चली जाए ना, आए हाय, फिर कुछ नहीं बाकी बचता।
और ऐसा ही हुआ अंकल कि वहाँ पर जिस घर में खुशियों के जो शादियाने बजने वाले थे, वहाँ पर क्या मातम शुरू हो गया।
हाँ जी, हाँ
जी। मौत थी। खैर अंकल, इस तरह की छोटी मोटी हमासते जो है बाज़ुकात सारी उम्र के लिए जो है दुख का बायस बन जाती है।
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही।
तो हम तो अपने दोस्तों से यही कहेंगे कि नई टेक्नोलॉजी आती है और नए मशागल आते हैं, जरूर उसे इस्तेमाल करें लेकिन एहतियात के साथ। ये याद रखें कि जिंदगी जो है वो खुदावन ताला का अनमोल तोहफा है और एक बार मिलती है।
हाँ जी,
इसकी हिफाजत कीजिए।
सही बात है। वैसे चलो ये तो एक थोड़ा सा दुखी सी बात हो गई
जी,
और सेल्फी का ये जो है ना नतीजा जो है वो भी हमने देख लिया। सेल्फी लेने पे कोई पाबंदी नहीं है,
बिल्कुल,
लेकिन ये है कि एहतियात से काम लेना चाहिए ना। हैं जी, वो मुझे ट्रेन की बात कर रही थी, मुझे ट्रेन की बात याद आ गई। ट्रेन पे बड़ी दोस्तियां हो जाती हैं।
हाँ जी,
बैठे बैठे लंबा सफर होता है, एक दूसरे से और कोई काम नहीं होता, गप्पे शप्पे लगाना शुरू हो जाते हैं
जी।
तो दो बंदे बैठे हुए थे ना आपस में सीट पे।
अच्छा,
एक आपस में गप्पे शप्पे मार रहे हैं, एक मुझे कहता है यार तुम दिन में कितनी बार शेव बनाते हो।
अच्छा,
वो सवेर हो गई ना ट्रेन में तो वो जल्दी से शेव बनाने चला गया।
अच्छा,
वापस आया तो उसने कहा तुम दिन में कितनी बार शेव बनाते हो।
अच्छा,
कहता मैं तो एक ही बार बनाता हूँ, तुम कितनी बार बनाते हो।
अच्छा,
कहता मैं तो 35-40 दफा बनाता हूँ। उसने कहा खैर है 35-40 दफा, कहता दरअसल मेरी हजाम की दुकान है। कैसे
सही है अंकल। अच्छा अंकल चलें अब कुछ और जाते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, मालूमात आपको मैं इंटरनेट की बात
नहीं, तो ये प्रोग्राम खत्म करके ना चले जाएं।
नहीं अंकल, अपने दोस्तों को भी साथ लेकर।
अच्छा अच्छा चलो ठीक है,
जो हम इस वक्त सुन रहे हैं ना।
ठीक है भाई, अपनी अपनी सोचों की गाड़ियों पे सवार हो जाए
जी,
तो मिसरम जो है वो हमें
इंटरनेट के जरिए,
हाँ जी, इंटरनेट के जरिए जो है किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है
जी। अंकल बिच्छू तो आपने देखे होंगे ना।
हाँ शाबाश है, बिच्छू देखे हैं मैंने, लेकिन दूर से ही देखे हैं,
दूर से देखे, लेकिन एक बंदा ऐसा भी है दुनिया में जो बिच्छू खाता है।
हैं जी
जी अंकल,
शाबाशी, ये कैसे कैसे यकीन जानो लोगों ने शौक पाड़ ली है। अब बिच्छू खाने का कोई तुक बनता है? अच्छा, उसको क्या कोई बीमारी है जिसके लिए वो बिच्छू खाना शुरू हो गया?
नहीं अंकल, मतलब वो एक मुजाहरा करता है इस चीज का, दिखाता है लोगों को और पैसे कमाता है।
अच्छा 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 अच्छा, सही है शाबाशी। तो लोगों को बिच्छू खा के दिखाता है, जिंदा बिच्छू खाता होगा वो?
जी अंकल, जिंदा बिच्छू और बिच्छू का जहर निकाले बगैर वो खाता है।
अच्छा वेरी गुड, वो बंदा तो फिर बहुत जहरीला होगा भाई, उस बंदे से तो वैसे ही बंदे को दूर रहना चाहिए
जी अंकल। ये
कई लोगों को आदत होती है ना ऐसे पुठे सीधे काम करने की, है जी। कई लोग, एक तीन चार बंदे थे ना वो अपने आप दिखाने के लिए, उनको बड़ी आदत होती है कि जी मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा।
हाँ।
और कई जो नौजवान होते हैं खुद तो कर कुछ नहीं सकते, अपने अबाओ जदाद के किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं।
ये तो है।
तो एक दोस्त कह रहा था, कहता है जी मेरा वालद जो है ना, बहुत बहादुर आदमी था।
अच्छा,
एक दफा उसने ये BRB नहर, ये लाहौर के करीब से गुजरती है।
अच्छा,
है जी
जी जी, जी।
कहता है BRB के एक पुल से उसने छलांग लगाई है, तो दूसरे पुल से आगे जाके निकला है।
क्या बात है अंकल।
उन्होंने कहा वेरी गुड भाई, तुम्हारा बाप तो वाकई बड़ा बहादुर आदमी था।
हाँ।
दूजा कहता है मेरा बाप इससे भी बहादुर आदमी था।
अच्छा,
उसने रावी में छलांग लगाई और दूजे किनारे पे जाके निकला।
क्या बात है अंकल।
दूजा कहता है तुम्हारे बाप ने क्या करना, मेरा बाप तो तुम्हारे बापों से भी ज्यादा बहादुर था।
हाँ।
उसने कहा कैसे? कहते उसने मंगला डैम में छलांग लगा दी।
निकला का
उन्होंने कहा अच्छा तो फिर क्या हुआ? कहता फिर पागल था, मर गया बेचारा। तो ऐसी भी कई होती है ना दास्तानें सुनाने के लिए, वो कोई बच्चा बता रहा था। लोगों को होती है ना आदत बच्चों को।
जी जी,
है जी। तो बच्चा कह रहा है मेरी मामा के बाल जो है ना इतने लंबे हैं कि वो ना उनके पाँव के टखनों तक आते हैं।
क्या बात है।
दूजा कहता है मेरी माँ के बाल जो है ना मम्मी के बाल इतने सुनहरी हैं कि लगता है जैसे सोने के बाल हों।
अच्छा।
हाँ जी। जी आप सोचे कि मैं क्या बताऊं। कहता है मेरी मामा के बाल जो है ना वो तो जादू के बाल हैं, जादू के।
अच्छा।
हाँ कहता है जब दिल करता है ड्रेसिंग टेबल पे रख देती है, जब दिल करता है सर पे रख लेती है। कैसे? तो ऐसे कई लोगों को बड़ी बड़ी हांकने की आदत होती है।
अरे अंकल, ये तो सच्चा वाक्य है, मैं आपको सही बता रही हूँ, हकीकत है बिल्कुल। अब आप अपने इस मोबाइल पर जब इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी खबरें आपको आम देखने में आएंगी।
हाँ जी हाँ जी। कोई बंदा कह रहा था ना, वो लड़का एक लड़की को खुश करने के लिए ना, कहते तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है।
अच्छा।
लड़की बड़ा नखरा करके छोड़ो भी ना। लड़का कहते तुम्हारे बाल बड़े हसीन और लंबे हैं।
अच्छा।
लड़की कहती है छोड़ो भी ना।
हाँ।
लड़का कहते तुम्हारी आवाज बड़ी खूबसूरत है।
हाँ।
तो लड़की फिर कहने लगी उफ़ अब छोड़ भी दो। कहते इतनी देर से छोड़ ही तो रहो कैसे।
अच्छा अंकल, आते हैं इस इन्फॉर्मेशन की मुतालिक, या ऐसा कर लेते हैं अंकल ये ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो बिच्छू खोर की है ये अपने दोस्तों को बताते हैं।
कौन से के बिच्छू की?
बिच्छू खोर की।
अच्छा, बिच्छू खोर, सही है।
दोस्तों वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्त पे का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। दोस्त, ये रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बस में दीवान। जी दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि ये बिच्छू खोर कौन है। दोस्तों बिच्छू एक खतरनाक तरीन जानवर है और इसके काटने के थोड़ी देर बाद ही इंसान की मौत वाकई हो जाती है।
शाबाश, कर लो बातें, बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही
जी
हो
अंकल।
है जी, ये सारे दुनिया को पता है, हमारे ज्यादा जो है ना जो लिसनर है वो देहाती इलाकों में रहते हैं और उनको पता है बिच्छू जब वो रात को पानी लगाने जाते हैं ना पैड़ियों में,
जी, जी,
है जी,
जी,
तो उनको पता है कि मतलब कहाँ पे बिच्छू कैसे निकलते हैं और कैसे काटते हैं और फिर कैसे उसका डंग बांधा जाता है, ये सब पता है। नवी बात बताओ, कोई नई बात।
अच्छा चलिए अंकल, नई बात यह है कि दुनिया में बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जो बिच्छुओं से वाकफियत रखते हैं और बिच्छू जमा भी करते हैं, लेकिन
अपने अपने शौक की बात है। मैं जब अपने बचपन में होता था ना
जी,
तो मुझे टैडी पैसे जमा करने का बड़ा शौक होता था।
अंकल मैं यही सोच रही हूँ कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, आपकी बातें खत्म नहीं होनी।
नहीं, वो बिच्छू बड़े के बताओ, ये बिच्छू जमा करने का शौक होता है।
हाँ जी हाँ जी,
बड़ी मुश्किल से पढ़ रही हो तुम, पढ़ो पढ़ो कोई बात नहीं।
जी अंकल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिच्छुओं के साथ रहना पसंद करते हैं, बल्कि बिच्छुओं को खाते भी हैं, लेकिन उनका जहर निकालकर उनको पकाकर खाते हैं।
हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
लेकिन अंकल, जो लंदन में रहने वाला है एक लुइस नामी शख्स, ये एक ऐसा बहादुर इंसान है जो जिंदा बिच्छू खा लेता है।
बहादुर का कमरा इंसान है कि बहादुर क्या हुआ भाई? जिंदा बिच्छू जब चूल्हा घर में मौजूद हो, है जी, छुरी घर में मौजूद हो, तो जिंदा बिच्छू खाने की क्या लोड़ है?
अरे अंकल, ये उसकी आदत हो गई हुई है खाने की, और ज्यादा हैरत की बात तो ये कि वो जहर निकाले बगैर खाता है और उसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 28 साल है, और बिच्छू ये जो लुइस है ये जिंदा बिच्छू मुंह में रखते हुए जरा भी नहीं डरता है और नहायत बेखौफी से किसी मजेदार खाने की तरह बिच्छू खाने का मुजाहरा करता
वैसे
है।
जितने बिच्छू ये खाता है ना, इससे तो बिच्छू डर जाते होंगे जब उनको पकड़ता होगा। है जी, वो कोई बंदा था ना, बड़ा जहरीला होता था, बड़ा जहरीला, उसकी बातों में जहर होता था। तो एक दिन बात बता रहे, कहता है जी मतलब सांप आ गया।
हाँ।
तो सांप ने मतलब उसके सामने जब पान खड़ा किया तो एकदम कहता है तू मुझे डंग मारने आया।
हाँ।
कहता है नहीं जी मैं तो आपसे जहर परवाने आया। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं।
अंकल आपने सही कहा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातों में जहर होता है।
हाँ जी।
और ये बातों के जो जहर होते हैं ये बड़े जहरीले होते हैं, इनके घाव जो जल्दी नहीं भरते हैं।
अच्छा चलो मुझे ये बताओ, ये बिच्छू वाली बात तो हो गई, इसको जिंदा बिच्छू खाने का शौक है। हाँ जी मुझे ये बताओ, एक सवाल मेरे जेहन में आया, तुम्हारे अकल का इम्तिहान लेना चाह रहा हूँ।
जी 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 अंकल।
एक हाथी है।
हाँ।
बहुत वजनी हाथी है, समझ लो कि सबसे भारा हाथी है।
जी
हैं जी। तो वो ना दरिया में चला गया।
अच्छा
अब बताओ कैसे निकलेगा?
जैसे गया अंकल वैसे ही निकलेगा।
शाबाशी, कैसे वैसे निकलेगा? नहा के निकलेगा। कर लो बात। दरिया में जाने का मकसद क्या है अगर वो ना आया ही ना तो?
अच्छा अगर चले प्रोग्राम जो है अपने इस्तेमाल की जाने बढ़ रहे हैं और हम अपने दोस्तों को बताएं कि ये जो इन्फॉर्मेशन या जो मालूमात आज हमने अपने दोस्तों को दी है, कोई भी बच्चा अगर इस वक्त सुन रहा है या कोई नौजवान, तो इसे घर पर करने की कोशिश मत करें, क्योंकि दोस्तों इस तरह
के घर से बाहर निकल के पावे कर ले।
अरे नहीं अंकल।
अच्छा कहीं भी करने की कोशिश करनी,
क्योंकि आमतौर पर अंकल टीवी में भी देखा गया कुछ ऐसे करतब दिखाए जाते हैं जो कि सिर्फ दूसरों को बताने के लिए कि ऐसी चीजें दुनिया में मौजूद है, लेकिन बच्चे जब करते हैं जैसे ब्लेड खाना, ट्यूबलाइट्स खाना और इसके अलावा बल्ब लोग खाते हैं, तो टीवी पे जब देखते हैं तो बच्चे और बड़े जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं।
नहीं ऐसी कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए और हमेशा एहतियात के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए। ये लोग जो होते हैं ये जिंदगी में चंद एक होते हैं और शाजो नादर ही जो है ना ऐसे कोई करतब करने वाले होते हैं, और उनकी जिंदगी में हो सकता है उनके कोई ऐसी चीज हो जिस्म में, या उन्होंने सारी जिंदगी उसकी प्रैक्टिस की हो, तो इस तरह वो करते हैं।
और वैसे भी अंकल उनके पास कुछ खास तकनीक्स होती हैं जिन्हें वो सीख कर ही ये सारे कारनामे करते हैं।
हाँ जी।
और ऐसे में हम मतलब नुकसान उठा लें तो हम अपने दोस्तों के लिए ऐसी तवक्कोआत कभी नहीं रखते हैं, बल्कि हम हमेशा अपने दोस्तों की सलामती के लिए दुआगो रहते हैं।
जी बिल्कुल, हमारे दोस्तों की सलामती हमें हर चीज से अजीज है। और ये तो इन्फॉर्मेशन होती है, दिलचस्प इन्फॉर्मेशन होती है, आप तक पहुंचाने की गर्ज होती है। आपसे ये नहीं कहना होता कि भाई ये फलाना बिच्छू खाता है तो अब हम भी खाने की कोशिश करें। हाँ जी मैंने एक बंदे को कह दिया।
अच्छा।
वो बंदा मुझे आगे कह रहा है, कहता है अंकल तुम अपनी जुबान नाक को लगा सकते हो?
अच्छा।
मैंने कहा नहीं, तो कहते मैं भी नहीं लगा सकता, तुम किधर के फिर अंकल दीवान हो गए।
अरे दोस्तों इसी के साथ ही जी हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, सलामत रहिए, और अब अपने मेजबान इरम इमरान और अंकल दीवान को इजाजत दीजिए।
गुजर गया करें हम दुआ और खुदा का शुक्र करें हम अदा, रात को जब सितारे निकल आते हैं और परिंदे सारे सोने जाते हैं, पर तूने है वाणी नन्हे बच्चों की रात भर you